द्वितीय अध्याय आधुनिकता और यथार्थ। पृष्ठ संख्या 11। आधुनिकता वैज्ञानिक जीवन बोध से उत्पन्न विवेक दृष्टि है। इसके अंतर्गत सम्यक और प्रासंगिक जीवन मूल्यों का चुनाव निहित होता है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है तथा जीवन की दृष्टि से प्रत्येक युग के अपने साधन होते हैं। जिंदगी जीने के लिए आदमी जिस प्रकार के साधन जुटा पाता है या बावजूद अपने युग की साधन संपदा के कोई साधन नहीं जुटा पाता है, तो इसका असर उसकी जिंदगी से छनकर उसके सारे परिवेश पर पड़ता है। ऐतिहासिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी के आसपास पूरे विश्व में आधुनिकता से प्रेरित जीवन दृष्टि का अभ्युदय होता है। एक और आधुनिकता वैज्ञानिक साधन संपदा के अनुसार नए प्रकार की जीवन शैली है, तो बोध के धरातल पर आधुनिकता रूढ़ियों, जड़ परंपराओं, अप्रासंगिक जीवन मूल्यों और जड़ताओं से मुक्ति भी है। इसके भीतर प्रासंगिक मानवीय सरोकार की स्वीकृति है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक रचना का प्रस्थान बिंदु रचना के उपजीव्य के रूप में कल्पित और अयथार्थ के स्थान पर यथार्थ का स्वीकार है। इस दृष्टि से आधुनिक रचनाशीलता भोगे जाते हुए जीवन के भीतर उतरकर उसकी जटिल द्वंद्वात्मक आंतरिकता को आत्मसात करती है। रचना के संदर्भ में यथार्थ का स्वरूप अधिक जटिल और संक्रांत है। आदमी की जिंदगी या उसकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली घटनाओं का स्वरूप इकहरा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या घटना को नियंत्रित करने वाले जीवन के अनेक स्तरीय नियम होते हैं। रचनाकार इसी जिंदगी को जानने की चुनौती लेता है। वह कल्पित सच्चाइयों के बल पर नहीं खड़ा होता, बल्कि जिंदगी की विशुद्ध सच्चाई के साथ बहुत दूर दूर तक होता है। और यही आधुनिकता का यथार्थ से रचनाशीलता के संदर्भ में अधिक सार्थक संबंध बनता दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज। हेडलाइन है, यथार्थ का रचनात्मक स्वरूप और आधुनिकता। नीचे पैराग्राफ चेंज करके, हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य के आविर्भाव से आधुनिकता का सूत्रपात माना गया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सही भी है, किंतु रचनाशीलता ने निरंतर विकसित होती हुई विश्व दृष्टि के गहरे सरोकार में जिस तरह अपने को निरंतर नए मूल्यों से जोड़ा है और अपनी उपलब्धियों को कायम किया है, उसको देखते हुए प्रेमचंद से आधुनिक रचनाशीलता की शुरुआत मानी जा सकती है। प्रेमचंद से पहले और प्राय प्रेमचंद के समकालीन भी अपनी रचना में जिस कल्पित जीवन स्थितियों का चुनाव करते थे, जिस कल्पित ढांचे में अपनी रचना को आयोजित करते थे, पृष्ठ संख्या 12, उसमें व्यापक जिंदगी की पहचान कहीं नहीं आ पाती थी। दलित और संघर्षशील श्रमजीवी वर्ग की जिंदगी तो साहित्य से निष्कासित ही थी। संभ्रांत कुल के लोगों की कोमल काल्पनिक रोमांटिक सच्चाइयां ही इस प्रकार के साहित्य का उपजीव्य थी। इन कहानियों में सबसे बड़ा द्वंद्व या संघर्ष था प्रेम और प्रणय का संघर्ष। जिंदगी की जटिलता की यथार्थ परक पहचान इन कहानियों में नहीं थी। कभी कभी किसी कथाकार में यथार्थ का कोई टुकड़ा चमक जाता था, जैसे जयशंकर प्रसाद की गुंडा और कौशिक की ताई। किंतु यहाँ भी रचनाकारों में एक आदर्शवादी आदर्श अवश्य था। शुरू में तो प्रेमचंद में भी आदर्श की रुझान काफी थी। यद्यपि उन्होंने अपने साहित्य में साहित्य से निष्कासित वर्ग का चुनाव किया था और निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग की जिंदगी से रचना के विषय तय किए, किंतु गांधी के उद्बोधन काल के जादू में बंद कर प्रेमचंद व्यक्ति और समाज में एक मानवीय परिवर्तन की कामना के साथ अपनी रचनाओं में आदर्श संकल्प की पेशकश कर रहे थे। इसी क्रम में जैसे जैसे वे जीवन के यथार्थ के साथ गहराइयां तय करते गए, वैसे वैसे उनके साहित्य का काल्पनिक आदर्शवादी फ्रेम टूटता गया। ठीक वही से उनमें यथार्थवादी रचना दृष्टि पैदा हुई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रेमचंद की इस दौर की कहानियों में जीवन सतह का यथार्थ है, गहराई का यथार्थ नहीं। आलोचकों को यह प्रकृतिवाद के करीब जान पड़ता है, किंतु धीरे धीरे प्रेमचंद की यथार्थवादी रचना दृष्टि निखरती जाती है और रचनाशीलता को अपने विकास यात्रा के मील का पत्थर मिल जाता है। रचना की प्रक्रिया में स्वीकृत यथार्थ जीवन के जीवित यथार्थ से भिन्न प्रकार का होता है। इसमें वह अपने संदर्भ की परिपूर्णता के साथ मूर्त होता है। इस प्रक्रिया में अनुभूत की प्रामाणिकता के साथ कलात्मक परिष्कृति के प्रयास शामिल होते हैं। साहित्य का यथार्थ मनुष्यों के आपसी संबंध को, उनकी सक्रियता को, उनके सुख दुख को आर पार समझता है। यह जिंदगी की एक नई समझ पेश करता है। यही कारण है कि रचना प्रक्रिया सिर्फ रचनाकार के भीतर नहीं चलती, बल्कि अपने पाठक के भीतर भी अपनी अनंत संभावनाओं के साथ पैदा होती है, चलती है। लेखक और पाठक के बीच की यह समझदारी रचना में स्वीकृत यथार्थ की अर्थवत्ता के बल पर कायम होती है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिकता के वर्ग से यथार्थ रचना में अधिक गुणात्मक होकर प्रकट होता है। इसके पास जीवन की सतही जानकारी नहीं होती, बल्कि जीवन को अनुभव में मूर्त करने की संश्लेषणात्मक कोशिश होती है। गोदान तक आते आते प्रेमचंद यथार्थ के मारक स्वरूप को पहचान गए थे और वहां वे अमानवीय जीवन स्थितियों से सीधे सीधे टकरा रहे थे। इस प्रकार टकराने की स्थिति और व्यवस्था दोनों ही उन्हें सुविधावादी वर्ग के समानांतर पराजय के लिए अभिशप्त अकिंचन वर्ग की पहचान से मिली। प्रेमचंद का साहित्यकार दलित जाति की पक्षधरता में खड़ा हुआ और यह स्पष्ट है कि 1930 से 36 के आसपास शोषक वर्ग के षड्यंत्रों तथा महाजनी सभ्यता की मुनाफाखोरी से प्रेमचंद अपनी सीधी लड़ाई मानते थे। कहना न होगा कि यथार्थपरक रचनाशीलता को विचारधारा के स्तर पर भी अपना पक्ष तय कर लेना होता है, तब उसे जीवन को पहचानने की सही अंतर्दृष्टि मिल जाती है। गोदान तथा प्रेमचंद वामपंथी विचारों से अभिभूत नहीं तो प्रभावित अवश्य ही थे। मार्क्स के वैज्ञानिक दर्शन के अनुसार उन्हें शोषित जाति का संकट दूर होता दिखाई दे रहा था। पृष्ठ संख्या 13। उपेंद्रनाथ अष्ट के अनुसार प्रेमचंद्र को सत्य से ज्यादा शिव पर अभिष्ट था। वे रचना को समष्टि की संपत्ति मानते थे, इसीलिए उनके रचनाकार की समाज संबंधता उनके समकालीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। कलावादी दृष्टि ने भी यथार्थ को कलात्मक प्रक्रिया में साधा और सुंदर के संकल्प से अपने रचनाओं का आयोजन किया, किंतु वहां यथार्थ का सार्थक स्वरूप उद्घाटित नहीं हुआ। इस प्रकार यथार्थ और आधुनिकता की एक दूसरे को पूर्ण करने वाली परंपरा प्रेमचंद के साहित्य में ही प्रकट हुई। पैराग्राफ चेंज। हेडिंग है यथार्थवाद। आधुनिकता मध्यकालीन दृष्टि से अलग यथार्थ को उसके अंतर्निहित तर्कों के साथ जानने वाली वैज्ञानिक दृष्टि है। साहित्य के संदर्भ में इस दृष्टि की संपन्नता रचनाकार को अधिक वस्तुवादी ढंग से रचनाशील होने की शक्ति देती है। इस प्रकार आधुनिकता और यथार्थ का गुणात्मक संबंध बनता है। यथार्थ आधुनिकता का उपजीव्य है। जीवन का जो यथार्थ एक रचनाकार ग्रहण करता है वह सतह पर उतराया हुआ सत्य नहीं है, बल्कि जीवन प्रक्रिया की संपूर्ण आंतरिकता इसके भीतर ग्रहण की जाती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। यथार्थ के अंतर्गत वे सारी अनेक रूपा अंतर क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका आदमी अनुभव करने एवं परिज्ञात करने के सिलसिले में भागीदार है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ शिव कुमार मिश्र, पुस्तक है यथार्थवाद, पृष्ठ संख्या 2। वस्तुतः यथार्थ यथास्थिति से अलग एक बृहत्तर बोध है जिससे वस्तुओं की संवाद क्षमता सम्मिलित होती है। यथार्थ के अंतर्गत वस्तुओं की परंपराएं, उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल होता है। यथार्थ की रचनात्मक व्याख्या का एक अच्छा प्रयास अंटर्स फिशर ने किया है। पैराग्राफ चेंज। कलाकार के मन को बाह्य यथार्थ के साथ अंटर्स फिशर ने जोड़ा है। मार्क्सवादी विचारकों ने कला में प्रयुक्त यथार्थ और बाह्य यथार्थ में जो भेद अंटर्स फिशर ने माना है उसे स्वीकार न करते हुए कला में वर्णित यथार्थ को अधिक महत्वपूर्ण माना है। यूं तो बाह्य यथार्थ कलाकृतियों में वर्णित यथार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन वह यथार्थ का एक आवश्यक अंग ही है। यथार्थ को अनेक विचार पद्धति के रूप में स्वीकारते हैं। पद्धति दृष्टिकोण व कलाकृतियों में चित्रित यथार्थ को एक साथ लेकर चलने का प्रयास लुकाय ने किया है। पैराग्राफ चेंज। साहित्य के कोशानुसार यथार्थवादियों पर ध्यान देते वक्त हमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, रचना में वर्णित चित्रण की अधिक उपयुक्तता के कारण यथा तथ्य सूक्ष्म विस्तृत वर्णनों को उपयुक्त रूप में पेश करने का प्रयास। दूसरा, पूरे साहित्यिक निर्माण में पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा विद्यमान रहने वाले लक्ष्य के रूप में। तीसरा, 19वीं शताब्दी में दूसरी स्थिति के प्रभाव में विकसित यथार्थवादी विचार के रूप में। पृष्ठ संख्या 14, पैराग्राफ 6। यथार्थ को वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह किसी भी वर्णन को पूर्ण व प्रभाव युक्त बनाने की एक नपी तुली कोशिश है। यह कोशिश प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में यथार्थ को जीवन के विभिन्न पक्षों, पात्रों व स्थानों को प्रभावित करने के वर्णनों में ही दृष्टिगोचर होता पाया गया है। इसको साहित्यकारों ने अपने साहित्य में उपजीव्य मानकर ग्रहण किया। भौतिक अनुभूति के आधार पर ही इस प्रकार के चित्रण पाए जाते हैं। भौतिक अनुभव को अपने रचनाओं में शेक्सपियर, तुलसीदास, कालिदास, भवभूति ने बड़ी सफलता से प्रयोग किया है, जिसके कारण इसे हम यथार्थवादी वर्णन न कहकर यथार्थ वर्णन कह सकते हैं। यथार्थ को जीवन के विभिन्न पक्षों, जैसे व्यक्ति, समाज, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करने वाले रूप व घटनाओं को प्रभावित करने वाले वर्णनों में ही दृष्टिगोचर होता दिखाई देता है। यथार्थवाद को पूरे साहित्य के निर्माण को अनुशासित करने वाले के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। इसी कारण हम इसे वाद का एक रूप कह सकते हैं। जिस कारण इसे वाद का एक अंग माना जाता है और उस जगह यथार्थवाद को यथार्थ चित्रण का एकमात्र उद्देश्य की ही नहीं वरन वहां वह लेखक को अनुशासित करके उसे आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शित करता है। अगर यह कहा जाए कि यथार्थवादी लेखक में उन दिशाओं का उल्लेख होना आवश्यक है जिनके द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। पैराग्राफ चेन हेडिंग है यथार्थवाद का विकास। यथार्थवाद का उद्भव प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से भिन्न था, जो मनुष्य को उसकी सच्चाई को देखने और प्रकट करने में सक्षम हुआ। उसे आलोचक आलोचनात्मक साहित्य के नाम से पुकारते हैं। मार्क्सवादी लेखक बुजुर्वा यथार्थवाद कहकर पुकारते हैं, जबकि आलोचनात्मक यथार्थवाद बुजुर्वा यथार्थवाद से एकदम अलग है। आलोचनात्मक यथार्थवाद के पक्षधर लेखक अपने वर्गों के हितों का ध्यान रखते हैं और बुजुर्वा यथार्थवाद के लोग अपने वर्ग के प्रति मोह त्याग कर जो भी सत्य है उसी का वर्णन व आलोचना करते हैं। समाज के सिवा आलोचनात्मक यथार्थवाद साहित्य में भी दिखाई देता है। साहित्य में इसका प्रभाव उपन्यास पर अधिक पड़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय औद्योगिकरण को अधिक प्रोत्साहन मिला। उस समय सभी किसान प्रायः दूसरी जगह पर जाकर कार्य करते हुए दिखाई दिए, जिससे समाज टूटे। उपन्यासों में औद्योगिकरण के कारण जन्म लेने वाली पूंजीवादिता की एक किरण 19वीं शताब्दी में एक रूसी उपन्यास में देखने को मिली। इस उपन्यास का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है। यथार्थ की जिस धारा को भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में लिखा, उसका विकास निरंतर पाया गया। पैराग्राफ चेंज। 19वीं शताब्दी में देश में सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तन ही नहीं, वरन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुए। उस समय पूंजीवादिता का बोलबाला था। पूंजीवादी समाज में मनुष्य स्वयं को किसी से मिला पाने में असमर्थ था, जिस कारण वह खुद को अपने के साथ ही अजनबी महसूसने लगा। किसान का महाजनों द्वारा शोषण, मजदूरों पर मालिकों के अत्याचार, देश में अंग्रेजों के अत्याचार थे, जिसे वे इज्जत से जीने में असमर्थ थे। कलाकार व लेखक भी पूंजीवादिता के कारण उस समय उनके माहौल से जूझने में असमर्थ थे। पैराग्राफ चेंज। अनसर्ट फिशर का कहना है कि इन्वर्टेड कमापन, पूंजीवादी दुनिया में हर उल्लेखनीय कलाकार तथा लेखक की यह विशेषता मानी जा सकती है। पृष्ठ संख्या 15, कि वह अपने चारों ओर से सामाजिक यथार्थ से समझौता कर पाने में कतई असफल रहा है। असफल ही नहीं, उसे हम इस माने में सर्वथा असमर्थ भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था के पहले के युगों पर दृष्टिपात करें तो हमें स्पष्ट होगा कि आलोचक यदि उन गुणों की समाज व्यवस्था के कट्टर आलोचक हैं, तो ऐसे लोग और ऐसे लेखक भी रहे हैं जिन्होंने उन व्यवस्था की हिमायत की है। यह तो केवल पूंजीवादी समाज व्यवस्था है जिसमें हर कला ने सामान्यता के एक हद से ऊपर महज विरोध और विद्रोह की कला के रूप में परिचय दिया है। पैराग्राफ चेंज। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ द नेसेसिटी ऑफ आर्ट। पृष्ठ संख्या 101। पैराग्राफ चेंज। अतः कहा जाए कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था के कारण ही समाज की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। उस समय देश की सारी जनता में तूफान मचा था। पूंजीपतियों के सिवाय सारा देश आर्थिक संकट से इतना त्रस्त था कि जब गांधी जी भारत आए, उन्होंने समाज की ऐसी व्यवस्था को देखकर उसके लिए जब आवाज उठाई तो वे भी उनकी आवाज से आवाज मिलाने लगे। पैराग्राफ चेंज। पूंजीवाद का शोषण चक्र अधिक समय नहीं चल सका। उसने अपना पैर जमाया ही था कि गांधी जी के स्वतंत्रता, अहिंसा, भाईचारे जैसे शब्द नारे के रूप में आने लगे। गांधी जी की आवाज सुनकर सारे साहित्यकार जाग उठे। उन्हीं के नारे से प्रभावित होकर प्रेमचंद जी ने अछूतों की समस्या को कर्म भूमि और जन जागरण की समस्या को रंग भूमि में उजागर किया। जिस प्रकार गांधी जी ने उनके समाधान का रास्ता बताया, उसी तरह प्रेमचंद ने भी अपने उपन्यासों में उन समस्याओं का हल बताया। इस प्रकार वास्तविक घटनाओं का समाधान उपन्यासों में पाया गया। उन्होंने अपने उपन्यास साहित्य में सरकारी कर्मचारी, जमींदारों, किसानों के अत्याचारों की घटनाओं का वास्तविक चित्रण किया। इन्हीं से यथार्थ साहित्य का शुभारंभ माना जाता है। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद की मुख्य चिंता संस्कृति और समाज की पूर्ण रचना की थी। इस चिंता के साथ ही उनका रचनाकार अपना प्रस्थान लेता और विकसित होता दिखाई देता है। प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यास की दृष्टि में भी उनके समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की घटनाएं, समस्याएं और मूल्य चिंताएं ही रही हैं। वहां प्रेमचंद की दृष्टि मूलतः सुधारवादी है। वे आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के प्रचार और प्रसार से टूटते अनिवार्य मानवीय मूल्यों को देखते हैं और एक भारतीय परिवेश, भारतीय जीवन विधि की चिंता करते हैं। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान तथा प्रगति को संदेह के साथ देखने वाले रचनाकार अवश्य ही नहीं है, किंतु जीवन मूल्यों और जीवन शैली के पाश्चात्यकरण को संस्तुत नहीं करते। इसी प्रकार पूंजीवाद के विकृत औपनिवेशिक प्रसार के कारण परिवार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाली अर्थलोलुपता की भी वे निंदा करते हैं। उनके प्रारंभिक उपन्यास यथा गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि सभी समस्याओं को चित्रित करते हैं। प्रारंभिक उपन्यास का शिल्प इकहरेपन की हद तक सरल है और इनमें उनका कथ्य लगभग उपदेश की तरह ऊपर आ जाता है, किंतु उसके अपने रचनात्मक विकास की यह अनिवार्य सीढ़ी है। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 16। बाद के उपन्यासों में प्रेमचंद जी की यथार्थ चेतना अधिक परिपक्व और आलोचनात्मक होती चली गई। वे समस्याओं को उनके व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझते और व्यक्त करते हैं। तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का रूप भी उनके सामने ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और वह साहित्य के वास्तविक पक्ष का महत्व समझने लगते हैं। पैराग्राफ चेंज। सेवा सदन हिंदी यथार्थवादी उपन्यास के रूप में विकसित कड़ी है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने भारतीय जनता के जीवन का आर्थिक व सामाजिक रूप का वर्णन किया है। सेवा सदन की नायिका सुमन एक दरोगा की बेटी है। एक बेटी के विवाह के लिए वे रिश्वत लेते हैं और पकड़े जाते हैं। सजा समाप्त होने पर वे अपनी बेटियों व पत्नी के साथ अपने भाई के घर चले जाते हैं। सुमन का विवाह अधेड़ व्यक्ति गजाधर से दहेज के अभाव में करा दिया जाता है। दोनों में अनबन रहती है। एक दिन उत्सव से देर से लौटने पर सुमन को घर से निकाल दिया जाता है और उसे एक वैश्या के यहाँ सहारा मिलता है। पैराग्राफ चेंज। वैश्यावृत्ति छोड़कर वह एक विधवा आश्रम में सहारा पाती है, किंतु वहां से भी निकाली जाती है। फिर वह अपनी बहन शांता के घर जाती है। घृणित दृष्टि से देखने पर वह वहां से भागकर एक कुटिया में जाती है, जहां की उसके पति गजाधर रहते थे। दोनों ने मिलकर सेवा सदन की स्थापना की। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद्र ने सामाजिक आर्थिक विसंगतियों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। जिस समय प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास की रचना की, वह समय क्रांति का था। उस समय समाज में फैली कुप्रथाओं को हटाने का नारा लगाया जा रहा था। वैश्याओं के सुधार के लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे। सेवा सदन की मुख्य समस्या वैश्यावृत्ति की समस्या ही है। इस उपन्यास में वैश्यावृत्ति की समस्या का जन्म आर्थिक रूप से गिरे होने के कारण है। सुमन के पिता के पास पैसा न होने के कारण उसके पिता उसे अधेड़ अवस्था की व्यक्ति के साथ विवाह करवाते हैं। नारी की पराधीनता की समस्या है, जिसका कि सुमन जैसी गरीब पुराने रूढ़िगत सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करती है। प्रेमचंद की क्रांतिकारी भावना उनके प्रगतिशीलता को उजागर कर देती है। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद जी मानव जीवन की मूलभूत समस्याओं का वर्णन करने के कारण यथार्थवादी हैं। साथ ही साथ उन्होंने समाज का सजीव चित्र खींचकर हमारे समक्ष रखा है। उन्होंने सेठ साहूकारों द्वारा गरीबों का गला घोटकर बनाई गई ऐसी संस्थाओं का वर्णन किया है जिसके अंदर पाप के कार्य किए जा रहे हैं। प्रेमचंद जी ने मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक रूप को परख कर समाज को उठाने का प्रयत्न किया है। पैराग्राफ चेंज। सेवा सदन में प्रेमचंद जी ने अच्छे वर घर की तलाश में गांव की एक रूढ़ी जो कि नौकर चाकरों द्वारा कार्य कराने का सामंती दृष्टिकोण है उसका वर्णन किया है। ग्रामीण जनता की इस झूठी शान शौकत के माध्यम से उत्पन्न एक नए यथार्थ का चित्रण होता है। सामंतवादी दृष्टिकोण के वे खिलाफ थे। इसको समाप्त करने की उन्होंने काफी कोशिश की। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद जी के उपन्यास सभी दृष्टिकोणों से यथार्थवादी रहे हैं। इनका यथार्थ चित्रण यथार्थ न होकर जीवन यथार्थ है। पृष्ठ संख्या 17। सेवा सदन उपन्यास पर दृष्टि डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपन्यास सामाजिक कुरीतियों की एक करुण गाथा है। वह इसमें युग को जागृत करने की भावना है। इस कारण आदर्शवाद की छाया भी पाई जाती है, किंतु फिर भी उनकी रचना एक कठोर यथार्थवादी है। पैराग्राफ चेंज। प्रेमाश्रम नामक उपन्यास में किसान व जमींदारों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास के वर्णन में प्रेमचंद जी ने सामाजिक चित्रों का वर्णन इस प्रकार किया है कि सामाजिक सभी कुरीतियां हमारे सामने उभर कर आई हैं। पैराग्राफ चेंज। गरीब किसानों पर जमींदारों के अत्याचार, अफसरों व वकीलों की धांधलेबाजी का खुलकर वर्णन किया है। इस उपन्यास में दो वर्गों का वर्णन है, एक तो जो ह्रास के कगार की ओर अग्रसर है जमींदार वर्ग के लोग, और दूसरे वर्ग के अंतर्गत किसान आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। इनका वर्णन किया गया है। इस उपन्यास के किसान शास्त्रों के बिना संघर्षरत यातनाएं सहने को तैयार हैं। उनमें अंधविश्वास व भाग्य को सर्वोपरि माना गया है, किंतु संघर्षरत होने के कारण उनका कल अपना होगा। और दूसरी ओर जो पूंजीवादी लोग हैं वे आज तो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, आज तो शक्तिशाली दिखते हैं किंतु कल उनका बहुत बुरा है। गौस खां इसी प्रकार का इंसान है जो कि ज्ञान शंकर की जमींदारी के आधार पर किसानों को परेशान करता है और सिपाहियों द्वारा बेगारी ली जाती है। उसकी खुलकर उसकी माँ बिलासी विरोध करती है। वह एक ऐसी नारी है जो जुल्म सहने को तैयार नहीं है। वह उनके जुल्मों का विरोध डटकर करती है। उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर हो रहे जुल्म को सहन नहीं कर सकता और वह मारा जाता है। विधवा का जीवन व्यतीत करने का उसे उतना दुख नहीं होता जितना कि उसे किसी के आगे सिर झुकाने का। वह सर नहीं झुकाती और उसका डटकर विरोध करती है। इस प्रकार उसमें वर्ग संघर्ष की भावना दृष्टिगत होती है। गोदान की धनिया व प्रेमाश्रम की बिलासी की विचारधाराएं प्राय एक सी हैं, किंतु धनिया उतना उभर कर सामने नहीं आती जितना कि बिलासी आती है। पैराग्राफ चेंज। इसमें किसानों के संघर्ष बढ़ते ही चले जाते हैं। किसानों के घरों को जलाना, चारागाहों में जानवरों को चरने न देना, किसानों के ऊपर मुकदमा चलाना, उसको घूस देकर गलत फैसला कराना, इस प्रकार वे जमींदारों के हाथों फंसते चले जाते हैं। फिर भी उनके जुल्मों से जूझने के लिए सारा गांव एक हो जाता है। लखनपुर गांव के किसानों की ताकत तो इतनी है कि कोई भी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस प्रकार उन्होंने अपने इस उपन्यास में कादिर मियां के नेतृत्व में किसानों को जागृत करने की भावना दिखाई है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय के भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना व्यापक रूप में विकसित हो चुकी थी। इस उपन्यास का यथार्थ दृष्टिकोण राष्ट्रीय चेतना के रूप में हमारे समक्ष उभर कर सामने आता है। पैराग्राफ चेंज। रंगभूमि प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा उपन्यास है। समय परिवर्तनशील है और उसके परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। समाज के परिवर्तन होने पर उनकी सभी परिस्थितियों में भी परिवर्तन आता चला जाता है और इस सर्वव्यापी परिवर्तन का असर साहित्य पर भी पड़ता है। पृष्ठ संख्या 18। प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में वर्णन करने के लिए उस समय के वातावरण परिस्थितियों का वर्णन अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना उनमें उपन्यासों की रचना दृष्टि का सही मूल्यांकन करना असंभव होगा। पैराग्राफ चेंज। रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने दो भारतीय वर्गों को लिया है, एक तो ईसाई कुटुंब है जो कि कारखाना बनाने के लिए पांडेपुर गांव की एक सूरदास की जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु सूरदास अपने गांव की जमीन को न देने के लिए आजीवन लड़ाई लड़ता रहता है। यह महात्मा गांधी जी के विचार का अनुयायी है। प्रेमचंद जी के ऊपर महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रभाव अत्यधिक था, जिसकी प्रेरणा लेकर उन्होंने सूरदास को इस उपन्यास का पात्र बनाया है। सूरदास अपनी जमीन को अपने पुरखों की निशानी समझता है। वह भीख मांग कर जीवन यापन करता है। वह गांव का सबसे परोपकारी, उदार व उच्च चरित्र का व्यक्ति है। वह उस जमीन के लिए संघर्ष अकेले ही करता है। उसकी जमीन उससे जबरदस्ती ले ली जाती है। पूरा गांव खाली कराया जाता है। सभी लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखते रह जाते हैं, किंतु सूरदास उसका मुकाबला अकेले ही करता है और वह इस संघर्ष में मारा भी जाता है। पैराग्राफ चीन। दूसरा वर्ग ईसाइयों का है, जो कि भारत की भूमि पर वास तो करता है, किंतु वह अपनी अंग्रेजियत को त्यागता नहीं है। एक विदुषी ईसाई की बेटी सोफी है, जो कि विचारों से स्वाभिमानी व स्वतंत्र है, विनय सिंह से प्रेम करती है। इसी के माध्यम से प्रेमचंद ने ईसाई समाज के आडंबरों का खुलकर प्रदर्शन किया है। पैराग्राफ चेंज। रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने सूरदास के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों के हाथ में मनुष्य हमेशा दबा रहता है। राजा महेंद्र सिंह नगर पालिका के प्रधान होते हुए भी सहमे रहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। प्रेमचंद ने रंगभूमि में बड़ी खूबी से यह दिखलाया है कि पूंजीपति जिसकी साठ गांठ जमींदारों और राजाओं से होती है, अंग्रेजी राज के परम भक्त और सहायक होते हैं। सूरदास इन सब की ताकत चुनौती देता है। उसकी लड़ाई वस्तुतः सामंत विरोधी और साम्राज्य विरोधी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ प्रेमचंद और उनका युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पृष्ठ संख्या 83। पैराग्राफ चेंज। रंगभूमि को आलोचकों ने एक स्वप्न कहा है, किंतु इस उपन्यास में सब हकीकत के रूप में दिखाई देता है। इस कारण इस उपन्यास को यथार्थवादी उपन्यास के अंतर्गत ही रखेंगे। पैराग्राफ चेंज। कायाकल्प प्रेमचंद की सामाजिक समस्याओं की काल्पनिक कथा है। इसमें जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रेम कहानी का एक वर्णन किया गया है। चक्रधर नामक युवक मनोरमा का शिक्षक है, जो कि उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। चक्रधर किसी कार्यवश आगरा चला जाता है। वहां उसके प्रति अहिल्या नामक युवती आकर्षित हो जाती है। दोनों का विवाह हो जाता है। उसे पुत्र रत्न शंखधर प्राप्त होता है। चक्रधर की पत्नी राजा की लड़की थी। उसे इस राज का पता चलने पर अपने पुत्र व पति की उपेक्षा करती है। अंत में मृत्यु को प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास की दूसरी कहानी महेंद्र सिंह व उनकी पत्नी देवप्रिया की है, जो प्रथम रात्रि में ही विधवा हो जाती है। पृष्ठ संख्या 19। दूसरे जन्म में वे विक्रम सिंह के रूप में आए, किंतु पुनः मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर शंखधर के रूप में जन्म लेकर देवप्रिया से मिले। इस प्रकार से लेखक ने इनके जन्म जन्मांतर तक की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। पैराग्राफ चेंज। कायाकल्प में उस समय की समस्याओं का समावेश किया गया है, जिस समय किसानों के साथ अनेक दुर्व्यवहार होते थे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। सामंत शाही शासन गरीबों से जोर जबरदस्ती रुपए वसूल करता है और रुपए नहीं अदा करने वाले किसानों में आतंक फैलाकर मारपीट, गाली गलौज और कुड़की हाकियों के लिए रुपए वसूले जाते हैं। पोलो के खेल में काम आने वाले घोड़ों को, घास नहीं खिलाने वाले गरीब चमार को हंटरों से पिटा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ कायाकल्प उपन्यास प्रेमचंद, पृष्ठ संख्या 111। पैराग्राफ चेंज। कायाकल्प की रचना के समय हिंदू मुसलमानों में काफी मतभेद था। वे एक दूसरे के विरोधी थे। इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा पा रहा था। उस समय प्रेमचंद जी ने हिंदू और मुस्लिम समाज में यशोदा नंद व ख्वाजा जैसे उदांत चरित्र वाले व्यक्तियों को जन्म देकर इस गुत्थी को सुलझाया है। किसानों, मजदूरों के चरित्रों व समस्याओं का यथार्थ वर्णन करना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। वे इस कला में अत्यंत माहिर थे। उन्हें इस कला का वकील कहकर संबोधित किया जाए तो वह कम नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद्र द्वारा गबन नामक उपन्यास की रचना यथार्थवादी शैली में हुई है। इस उपन्यास का कथानक मध्यवर्गीय परिवार की परिस्थितियों का है। यह उपन्यास प्रेमचंद के इससे पहले रचित सभी उपन्यासों से भिन्न है। इस उपन्यास को लेखक की मनोवैज्ञानिक प्रतिभा ने चार चांद लगा दिए हैं। परिस्थितियों में पढ़कर मनुष्य का निर्माण भी उसी के अनुरूप हो जाता है। अतः यह कहा जाए कि जिस परिस्थिति में व्यक्ति रहेगा वैसा ही वह बनेगा तो अतिशयोक्ति नहीं है। इस उपन्यास में रमानाथ के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं इसका जीता जागता प्रमाण है। पात्रों के चरित्रों का वर्णन जिस प्रकार से प्रेमचंद्र जी यथार्थ रूप में करते हैं यह उनकी एक कला ही है। रमानाथ एक म्यूनिसिपल ऑफिस का कर्मचारी है। उसका विवाह एक जालपा नामक युवती से होता है। वह अपनी पत्नी के हार पाने की इच्छा पूर्ति के लिए सरकारी धन का गबन करता है और फिर पकड़ा जाता है। प्रेमचंद जी ने अपने इस उपन्यास में जुल्मों से जूझने का प्रयत्न किया है। पैराग्राफ चेंज। मध्य वर्ग की दर्दनाक कहानी का यथार्थ चित्रण गबन में किया गया है। मध्यवर्गीय समाज प्रेमचंद जी के समय से लेकर आज तक प्राय उसी स्थिति में है। उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। रमानाथ के पिता दयानाथ व उनकी माता रामेश्वरी व दो छोटे भाई जो कि पिता की ईमानदारी के पैसे से किसी प्रकार अपना गुजारा करते हैं। दयानाथ ने रमानाथ का विवाह जालपा नामक एक लड़की से किया। उसमें उन्होंने गहना एक भी नहीं चढ़ाया बल्कि शादी बड़ी शान शौकत से की, जिसको कि जालपा ने अपने मन में गांठ बांध ली। इसी कारण सरकारी गबन करते हैं और इस भूल के कारण वे उलझ जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 20। प्रेमचंद जी ने नारी के आभूषण लोलुपता को सटीक पकड़ा है और उसका सजीव चित्रण भी प्रस्तुत करते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद जी के उस उपन्यास का तीसरा चरण एक नई बस्ती है, जिसमें आदर्श परिवार बसते हैं। वहां कोई छुआछूत नहीं है और न ही किसी का शोषण होता है। इस चरण में जिस प्रकार का वर्णन है उसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जा सकता है। इस उपन्यास को हम सिर्फ यथार्थ चित्रों के आधार पर यथार्थवादी उपन्यास के नाम से पुकार सकते हैं, किंतु उपदेशों के कारण इसमें आदर्श आ जाते हैं जिससे इसे आदर्शवादी उपन्यास कह सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें उपदेश भी है और यथार्थ चित्रण भी। इस कारण गबन को प्रेमचंद जी का एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। निर्मला नामक उपन्यास में प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा व अनमेल विवाह पर प्रकाश डाला है। इस उपन्यास की प्रमुख समस्या आर्थिक होते हुए भी उसके दूसरे रूप विवाह व दहेज की समस्या के अंतर्गत उभर जाती है। इन्होंने इस उपन्यास की रचना आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर की है। उनकी यह आदर्शवादिता निर्मला के निर्माण में उभर कर सामने आई है। निर्मला की माँ विधवा है और वह अपने पूर्व विचरित भावना को त्याग कर आर्थिक अभाव के कारण निर्मला का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति तोता राम से कर देती है, जिसको पहले ही दो पुत्रियां और एक पुत्र है। तोता राम कामुकतावश भयंकर अपराधों को करता है, जिसके कारण निर्मला का सारा जीवन विषाक्त हो जाता है। किंतु निर्मला व पुत्र मनसा राम का प्रेम माँ बेटे का प्रेम था। वह उसे अपनी ममता से ओत प्रोत करती है, किंतु पिता के संदेह और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को भोगता हुआ मनसा राम मर जाता है। पिता के व्यवहार व भाई की मृत्यु से जिया राम गहनों की चोरी कर घर से भाग जाता है और छोटे पुत्र द्वारा भी भागने की कोशिश की जाती है। निर्मला की लाश उठाने के समय उसके पूर्व निर्णित पति के सामने आने पर उनकी पत्नी उन्हें अत्यंत तिरस्कृत करती है, जिससे वे क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लेते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार से इस उपन्यास में दहेज व अनमेल विवाह के सभी रूपों को दर्शाकर उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रेमचंद जी अत्यंत प्रयत्नशील रहे हैं। उनको जहां कहीं भी समाज की दुर्व्यवस्था को उभारने का मौका मिला है उन्होंने उसका खुलकर प्रयोग किया है। निर्मला जैसी विमाता की समस्या को दर्शाने वाला हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी है। इस उपन्यास में समाज के यथार्थ रूप को सामने लाकर रखा गया है। वे चित्र यथार्थ चित्रित होने के कारण सजीव हो उठते हैं। पैराग्राफ चेंज। कर्मभूमि नामक उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता अछूतोद्धार व किसानों के उत्थानों की प्रेरणा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कर्म भूमि हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन की गहराई और प्रयास का उपन्यास है। यह आंदोलन एक जबरदस्त सैलाब की तरह तमाम जनता को अपने अंदर समेट लेता है। विद्यार्थी, किसान, अछूत, स्त्रियां, शिक्षक, व्यापारी, मजदूर सभी इसके प्रभाव में आगे बढ़ चलते हैं। प्रेमाश्रम के किसान अब अकेले नहीं है, उनकी लड़ाई के साथ तमाम जनता अपनी आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ रही है। पृष्ठ संख्या 21। आंदोलन में जनता से नए नेता पैदा होते हैं, लाठी चार्ज होते हैं, गोलियां चलती हैं, लेकिन लोग अपनी सफे मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। कर्मभूमि हिंदुस्तानी जनता के उन स्तरों को रंगमंच पर लाकर खड़ा करती है जिसके दर्शन पहले हिंदी कथा साहित्य में कम हुए थे। ये शहर और गांव के गरीब अछूते हैं। कर्मभूमि में सबसे ज्यादा जोर जमीन की समस्या, लगान कम करने की समस्या, खेत मजदूरों और गरीब किसानों के लिए जमीन की समस्या पर बल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पैराग्राफ चेंज। कर्मभूमि को यथार्थवादी दृष्टि रखकर रचा गया है। इस उपन्यास में गरीबों की समस्या, खेत मजदूर, किसानों की कठिनाइयों और उसमें निराकरण की भावना को अधिक महत्व दिया गया है। उस समय देश की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेमचंद जी ने गरीब किसानों की समस्याओं को सुलझाने और हरिजनों को बराबरी का दर्जा दिलाने की भरपूर कोशिश की है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास की पहली समस्या किसानों की है। उनके ऊपर जमींदार लगान लगाते हैं, किसानों को उस लगान को चुकाने के लिए घर बार सभी बेच देने पड़ते हैं। इस कारण पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसानों की सभी समस्या का वर्णन प्रेमचंद जी ने पैनी नजर से किया है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। बेचारे, एक तो गरीब ऋण के बोझ से लदे हुए, दूसरे मूर्ख न कायदा जाने न कानून। महंत जी जितना चाहे इजाफा करे, जब चाहे बेदखल करे, किसी में बोलने का साहस न था। अक्सर खेती का लगान इतना बढ़ जाता था कि सारी उपज लगान के बराबर भी न पहुंचती थी, किंतु लोग भाग्य को लेकर भूखे नंगे रहकर कुत्तों की मौत मरकर खेत जोतते जाते थे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा पृष्ठ संख्या 85 पैराग्राफ चेंज। किसानों की आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों में किया गया है, जो शोषण से इतने पीड़ित हैं कि कर्मभूमि में चौधरी नाम का किसान कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हम भूखों मरते हैं, वहां मलाई उठती है, उस पर हमारा रक्त चूसा जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ कर्मभूमि प्रेमचंद पृष्ठ संख्या 293 पैराग्राफ चेंज। कर्मभूमि में स्त्री चरित्रों का वर्णन वर्ग संघर्ष को ध्यान में रखकर किया गया है। सलोनी नामक महिला ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने की भरसक कोशिश की है। गूदड़ जब बीज के अभाव में उससे खेत छोड़ने को कहता है तो वह क्रोधित हो उठती है। दूसरी ओर मुन्नी, जो कि जुल्मों की शिकार हो चुकी थी, वह अपना जीवन हरिजन की बस्ती में रहकर व्यतीत करती है। अमरकांत को जब गिरफ्तार किया जाता है, वह उसे मोटर से उतारने की कोशिश करती है। उसके मन में हिंसा की ज्वाला भरी पड़ी है। वह कहती है, इन्वर्टेड कॉमा पेन, हम लोग खड़े ताकते रहे और तुम्हें कोई पकड़ ले जाए, तुमने कोई चोरी की है, डाका मारा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ कर्मभूमि प्रेमचंद पृष्ठ संख्या 328 पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास में जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वासों व जमींदारी प्रथा को उजागर किया गया है। किसान महंतों के सारे कारनामे चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, उनको मंदिर में काफी दूर रहना पड़ता है। वे अगर मंदिर में चले जाए तो ब्राह्मण सोचते हैं कि अघोर पाप हो गया। इस प्रकार ढोंग का प्रदर्शन कर्मभूमि में प्रेमचंद जी ने यथार्थ रूप में उजागर किया है। पृष्ठ संख्या 22 कर्मभूमि में प्रेमचंद किसान, हरिजन व किसानों की स्त्रियों का यथार्थ व संघर्षशील चित्रण किया है, जो कि उसके लिए निरंतर जूझते रहते हैं। प्रयास करने पर ही विजय प्राप्त होगी, उन्हें भी विश्वास था कि जनता को विजय अवश्य प्राप्त होगी। पैराग्राफ चेंज। गोदान प्रेमचंद की अंतिम कृति व श्रेष्ठ रचना के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है। गोदान एक प्रगतिशील विचारों से परिपूर्ण यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान में किसानों की करुण गाथा दर्शाई गई है। होरी इस उपन्यास का प्रधान नायक है। वह मेहनत तो दिन रात करता है किंतु दो वक्त की रोटी जुटाने में असफल रहता है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने वर्ग संघर्ष चेतना को उभार कर जनता के सामने रखा है। उन्होंने सामाजिकता व धार्मिकता के नाम पर पाखंडता का कड़ा विरोध किया है। इस उपन्यास में होरी के माध्यम से किसानों के सभी शोषणों का वर्णन किया गया है। उसे देखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वह उन तमाम गरीब किसानों की विशेषताएं लिए हुए है जो जमींदारों और महाजनों की धीमे धीमे लेकिन बिना रुके हुए चलने वाली चक्की में पिसा करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद और उनका युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पृष्ठ संख्या 102। पैराग्राफ चेंज, गोदान में किसान के शोषण का चित्रण अत्यंत गहराई से किया गया है। होरी एक किसान है जो कि दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी एक इच्छा अपने घर पर एक गाय बांधने की पूरी नहीं होती। इस इच्छा के लिए वह प्रयास भी करता है पर निरर्थक होता है। अंत में वह 125 रुपए का गाय द्वारा ब्राह्मण को कृत्रिम रूप में गोदान करता है। पैराग्राफ चेन, गोदान में शोषित वर्ग के जीवन की समस्याओं का चित्रण अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से हुआ है। इस उपन्यास के पहले के किसी भी उपन्यास में ऐसा वर्णन प्रेमचंद जी ने नहीं किया है। इस उपन्यास का नायक होरी एक आदर्श मानव न होकर किसान है जिसमें अनेक दुर्बलताएं भी हैं। प्रोफेसर मेहता को छोड़कर इस उपन्यास के सभी पात्रों में यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है। इस उपन्यास में परिस्थितियों का निराकरण नहीं किया गया है जिससे कि आदर्शवाद को स्थान नहीं मिल पाता और यह उपन्यास सिर्फ कोरा यथार्थवादी उपन्यास ही रह जाता है। पैराग्राफ चेंज, प्रेमचंद जी ने भारतीय समस्याओं को अत्यंत करीब से देखा है, इस कारण उनका चित्रण यथार्थ है। उनकी दृष्टि यथार्थता के साथ साथ समाज की मूलभूत सबलताओं दुर्बलताओं पर की गई है, किंतु उपन्यास की रचना उन्होंने अपने काल्पनिक चित्र के आधार पर ही की है। उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है कि समाज की विभिन्न बुराइयों से लड़कर उन्हें खत्म किया जाए। ऐसा करने के लिए समाज व देश में क्रांति लानी पड़ेगी और इसी कारण उन्होंने अपने अंदर की जागी क्रांतिकारी भावना को स्थान दिया। भाषा, भाव, वातावरण सभी दिशाओं में इनकी दृष्टि यथार्थवादी ही रही है। इनका यथार्थ सिर्फ एक कोरा यथार्थ न होकर बल्कि वह एक जीवंत मानव का यथार्थ है जो कि नवीन चेतना को जागृत करने की एक मजबूत शक्ति है। वे अपने उपन्यास में समस्याओं और उन्हें दूर करने के सभी उपायों का भी वर्णन करते रहे हैं। उनमें नवनिर्माण की भावना जो जागृत होती दिखाई देती है वह उनको आदर्शवाद की ओर ले जाती है, किंतु उसका भी मूल आधार यथार्थवादी दृष्टि ही है। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 23, प्रेमचंद जी की यथार्थवादी दृष्टिकोण व आदर्शवादी यथार्थवाद का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसका प्रभाव उस समय के लेखकों पर भी पड़ा है, किंतु प्रभाव प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल व तितली में दिखाई देता है। कंकाल नामक उपन्यास में आदर्शवादी यथार्थ को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने इस दो रूपों प्रकृतिवादी विचारधारा व आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के रूप में किया है। लेखक ने पतितों की व सामाजिक कुरीतियों को दिखाया है और अंत में उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। इसका नायक विजय एक अत्यंत दारुण चित्र उपस्थित करता है। वह दाने दाने को मोहताज है, भीख मांगता है, परिस्थितियों से उलझकर पैतृक संपत्ति भी छोड़ देता है, किंतु सभी का साहसपूर्ण विद्रोह भी करता है। विजय के पिता से पैसे वसूल कर अपने कंकाल की अंत्येष्टि एक करुण व आदर्श चित्र उपस्थित कर देता है। पैराग्राफ चेंज, प्रसाद जी मानवतावादी लेखक होने के कारण वे इंसानियत को अधिक महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि सही आचरण हमेशा ही आगे बढ़ते हैं। तितली की कथा काल्पनिकता के आधार पर ही की गई है, किंतु प्रसाद जी उसे यथार्थवादी दिखाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। जिसके मोह में उन्होंने वैश्या मैना को उसी रूप में लिया है, वरना इसमें उसका सुधार किया जाता। मैना प्रणय के सामने रुपयों को कम महत्व देती है। मधुबन के कहने पर रख तो लेती है, किंतु वक्त आने पर उसे जेल भिजवा देती है। इस उपन्यास में परिवार की आदर्श सभ्यता को महत्व दिया गया है। और इसी कारण वॉरसन द्वारा सेली का विवाह करवाया है। इस उपन्यास की मूल भावना ग्राम सुधार की भावना, रामधारी व रहीम गोल का चरित्र, महंत के पाप कार्य, बिहारी जी का नाम लेकर वैश्या नचाना, ठाकुर की पूजा आदि सभी सामाजिक पहलुओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। तितली परिवार के झकझोरी से टूट कर खोती नहीं है, बल्कि वह अपने हृदय में उन सभी बातों को लेकर उसे दूर करने के लिए जुटी रहती है। वह उस समय का इंतजार करती है कि उसका देवता आकर उसे सभी वरदानों से परिपूर्ण कर देगा, किंतु इसको पूरा नहीं किया गया है। इस कारण आदर्श को न दिखाकर यथार्थ को लिया गया है। पैराग्राफ चेंज। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने अपने उपन्यासों में प्रेमचंद की दृष्टि को लिया है। उन्होंने माँ और भिखारिन की रचना इसी आधार पर की है। भिखारिन के पात्र प्रेमचंद जी की तरह वर्ग प्रधान है, किंतु उनमें प्रेम के रूप को अधिक चित्रित किया गया है। रामनाथ एक ऐसा प्रेमी है जो कि समाज की नजरों से बचकर प्रेम तो करते हैं, किंतु उसे पूरी तरह से निभा सकने में बेदिल बने रहते हैं। आज भी समाज में ऐसे युवकों के हाथों में अनेक युवतियों को फंसा हुआ देखा जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष केवल उसके रूप का प्यासा है। पुरुष की दीनता में यही भावना रही है। रामानाथ ने भिखारिन को भोजन व साड़ी उसके दुख से परिपूर्ण होकर नहीं दिया, बल्कि उसके यौवन के कारण दिया है। इस बात को देखने से लगता है कि यह उपन्यास कथा वस्तु प्रधान न होकर बल्कि चरित्र प्रधान उपन्यास है। इस कारण इसे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का रूप कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। पृष्ठ संख्या 24। इस उपन्यास की भिखारिन रमानाथ की यहाँ दासी का कार्य करती है, फिर बाबा की संपत्ति की रानी बनती है और अंत में उसे फिर भिखारिन बनने के लिए बाधित किया जाता है। उसने किसी भी तरह अपनी परेशानी का विद्रोह नहीं किया है, किंतु रामनाथ के विवाह के समय वह अपने प्राण देने के लिए तत्पर हो उठती है। इस प्रकार इस उपन्यास के चरित्रों में यथार्थता का रूप दिखाई देता है, न कि कथा में। पैराग्राफ चेंज। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक तथ्यों का रोमांटिक तथ्यों से जोड़कर वर्णन किया है, जिस कारण उन्हें शुद्ध आदर्शवादी कहा जा सकता है। उन्होंने अपने उपन्यास के हृदय में जन्मी प्रेम भावना को शारीरिक संबंधों से वंचित दिखाया है। इस प्रकार की भावना झांसी की रानी में प्रेम के स्वरूप में परिलक्षित होता है। पैराग्राफ चेंज। वर्मा जी के उपन्यासों में इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं को भी लिया गया है और उनका समाधान भी किया गया है। इस कारण उनके ऐसे उपन्यासों को आदर्श यथार्थवादी उपन्यास के नाम से संबोधित किया जा सकता है। गलत उपन्यास में दहेज प्रथा का विद्रोह किया गया है। 100 भैंसों के दहेज में न मिलने पर अपनी पत्नी को उसके मैके में ही मारता है, जिससे क्षुब्ध होकर रामा नदी पार करके अपने ससुराल चली जाती है। गंगा नामक उपन्यास के माध्यम से वर्मा जी ने नई मान्यताओं को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने गंगा का हाथ रामचरण के हाथ सौंप दिया। कुंडली चक्र में भी भुजबल के चरित्र का यथार्थ चित्रण किया है। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद के विरासत के रूप में ऐसे कथा साहित्य का विकास करता हुआ नहीं दिखाई देता। इस प्रकार का प्रयत्न उस पीढ़ी में महत्वपूर्ण रूप में यशपाल में ही दिखाई देता है। यशपाल ने जीवन के समस्याओं को मार्क्सवादी दृष्टि से देखा है और अच्छा साहित्य लिखा है। यशपाल के झूठा सच को प्रेमचंद की विरासत माना जा सकता है। यह उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा के अंतर्गत आता है। झूठा सच उपन्यास को एक जीवन दृष्टि के रूप में स्वीकार किया है, जिसको परखने के लिए विरोधी दृष्टियां ली जाती हैं। इस उपन्यास को परखने के लिए उस समय की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। उस समय की परिस्थितियां किस प्रकार हकीकत को उजागर करती हैं? उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से समाजवादी दृष्टि का सहारा लेकर अमानवीकरण का विरोध भी किया है और राजनीतिक स्थिति को सामाजिकता के सभी पक्षों के साथ समेटा है, जो कि इनके उपन्यास की महान उपलब्धि कही जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। झूठा सच का ऋषि और मुनि दो रूपों में बटा हुआ पाया जाता है। मुनि चिंतन करता है और ऋषि उसका सृजन करता है। मुनि के सोने पर ऋषि को सृजन करने का मौका मिलता है। यशपाल की नजर में सच और झूठ को अलग अलग दिया गया है। इसे वे अपने उपन्यास के पात्र तारा व सोमराज के माध्यम से प्रतिफति करते हैं। उन्होंने प्रेम और विवाह की समस्या को अनेक युगलों के माध्यम से उजागर किया है। प्रेम विवाह की समस्या तारा सोमराज, तारानाथ, कनकपुरी, कनकगिल, राजेंद्र, उषा, सीलो रतन आदि के माध्यम से उजागर किया है, जो कि पहले तो प्रेम करते हैं और अंत में उनका विवाह हो जाता है। उन्होंने नारी को सभी आधारों पर ऊपर उठाने की कारगर कोशिश की है। पृष्ठ संख्या 25। तारा का पति सोमराज का संबंध उसकी भाभी से और बंती के पति उससे अपमानित करते हैं, जिस कारण अपने आदर्श को स्थापित करने के लिए वही घुट घुट कर मर जाती है। विवाह के पहले व विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष के संबंधों को उजागर करने की इनकी कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नारी को अत्यंत स्वतंत्र रूप में लेते हैं और उनके सभी पक्षों की वकालत भी करते हैं। ये विवाह को एक सामाजिक बंधन में स्वीकारना अनुचित समझते हैं और उसे व्यक्ति स्वतंत्रता के रूप में प्रस्फुटित करते हैं। वे मानते हैं कि पुरुष अगर स्त्री को तिरस्कृत करता है तो उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए दूसरे संबंधों को स्थापित करने के लिए, और इसी बात को वे सच कहते हैं। बाकी सभी दृष्टिकोण झूठे हैं। इनके दूसरे भाग में तलाक की समस्या को उठाकर वे नारी के प्रेम में पड़ी दरार को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे तलाक की समस्या को सच कहते हैं। प्रेमचंद की परंपरा को स्वीकारते हुए उनकी तरह वे तलाक के खिलाफ नहीं है। प्रेमचंद की मालती मेहता सिर्फ प्रेम तक ही सीमित रहते हैं, किंतु यशपाल इस सीमा के आगे बढ़कर उनका विवाह कराते हैं। उन्होंने यथार्थ को अधिक महत्व दिया है और यथार्थ चित्रण प्रेमचंद की परंपरा के आधार पर ही किया गया है। इन्होंने प्रेमचंद की तरह सामाजिक और सामाजिक परिस्थितियों को एक दूसरे में गूंथना चाहा है, जिसमें कि वे प्रेमचंद जी की तरह सफल नहीं हो सके हैं। प्रेमचंद यथार्थवादी रहे हैं और यशपाल जी ने परंपरा के रूप में अनेक मार्ग का अनुसरण किया है। इस प्रकार प्रेमचंद की विरासत को शून्य में डुबोने से यशपाल ने अवश्य बचाया है। पैराग्राफ चीन। इस रचना पीढ़ी के बाद की पीढ़ी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की पीढ़ी है। ये अज्ञेय और जैनेन्द्र की रचना प्रकृति से लगभग जुड़े हुए कथाकार हैं। यही रेणु नागार्जुन, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगीय राघव, रामदरस मिश्र जैसे अनेक उपन्यासकार भी आते हैं, जो कि प्रेमचंद की विरासत के प्रति गंभीर है। आगे चलकर राही मासूम रजा और काशीनाथ सिंह आदि उपन्यासकार भी आते हैं। समाप्त।